इस तरह एक साथ बैठे हैं।
जिससे हम चूकते चले जा रहे हैं, शायद
हमें आज इस बात पर जरूर बैठ के विचार करना चाहिए। अपने जीवन के अनुभव से यह जरूर सीखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने हाथ से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हों। दीपक हवाएं तो बुझाती हैं भैया, पर कभी कभी दीपक अपनी ही जोर से चलने वाली सांस से भी बुझ जाता है। दीपक जलाना आसान है पर उसे हवाओं से बचाना भी आसान है, पर उसे अपनी ही तेज चलती सांसों से बचाना उतना आसान नहीं है। ऐसा ही हमारे जीवन का दीपक है, ऐसे ही और जीवन है जो दीपक की तरह प्रकाशित होते हैं, पर हम अपने ही किन्हीं कारणों से उन्हें बुझा देते हैं। हमारी आंख उस रोशनी को नहीं देख पाती जो हम पर निरंतर बरसती है, जो हमारे जीवन में प्रतिक्षण है। हमने बहुत सारे सुविधाएं, बहुत सारे साधन जुटाए हैं जो हमें रोशनी देते हैं, जो हमें रोशनी का भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन एक वो जो रोशनी हमारे भीतर निरंतर है, जिसके लिए बाहर की किसी भी रोशनी की जरूरत नहीं है, क्या उस रोशनी को हम नहीं देखेंगे? जब बुद्ध पैदा हुए थे तब ज्योतिषियों ने ये कह दिया था कि इसके जीवन में यदि इसकी आंख खुल गई तो ये संसार से विमुख हो जाएगा। इसकी आंख अगर खुल गई और इसकी आंख खुलते ही इसको अपने जीवन की रोशनी दिखाई पड़ गई तो मानिएगा कि ये संसार से विमुख हो जाएगा। बहुत मुश्किल पड़ी पिता को, उन्होंने कहा कि क्या मेरा बेटा अंदर रहेगा क्या? उन्होंने कहा नहीं, आंख तो खुलेगी इसकी, मैं उस आंख के खुलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो जीवन की रोशनी देख पाए उस आंख की बात कर रहा हूं। ज्योतिषियों ने कहा ऐसा है, तब तो पिता बहुत चिंतित हुए कि आंख ना खुल पाए, देखो तो। पिता भी शायद ऐसा चाहता है कि मैंने जिस बेटे को पैदा किया है उसकी आंख ना खुल पाए, वो आंख जो इस दुनिया को ठीक ठीक देख सके, वो आंख। पिता जिस भ्रम में जी रहा है वो चाहता है कि बेटे की आंख भी उतनी ही खुले जिससे कि वो भ्रम दिखाई पड़े, सच्चाई दिखाई ना पड़े। एक विशेष सर्कल है, हम अपनी सारी चीजें अपनी आने वाली पीढ़ी को देते चले जाना चाहते हैं। ज्योतिषियों, यदि तुमने ऐसी भविष्यवाणी की है तो क्या कोई उपाय है कि बेटे की आंख ना खुल पाए? एक पिता कह रहा है। ज्योतिषियों ने कहा कि हां है, तीन बातों से इसे बचाया जाए। जैसे जैसे ये बड़ा होने लगे इसे तीन बातों से बचाया जाए। कहानी बहुत मामूली सी भी है, घटना बहुत मामूली सी है, जीवन की सब घटनाएं मामूली हैं। यदि हम उनके ठीक ठीक अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो सब जीवन की घटनाएं मामूली हैं, और जो एक बार उनके ठीक अर्थ समझ लेता है उसे हर जीवन की घटना बहुत कीमती होती है। हम सबके जीवन में ऐसी घटना घटती है लेकिन बहुत मामूली सोच करके हम उसे छोड़ देते हैं। तीन उपाय किए जा सकते हैं आंख न खुलने के। पहला उपाय कि कोई भी इस बच्चे के सामने जब ये बड़ा हो रहा हो कोई दुखी आदमी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, कोई मुरझाया हुआ चेहरा नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। राजा ने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये उपाय हो जाएगा। और बताओ दूसरा उपाय क्या है? कोई मृत देह इसके सामने नहीं आनी चाहिए, मरा हुआ व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा यह भी ठीक है। और तीसरा उपाय और करना पड़ेगा कि इस हम कैसे बोलो, तो ये डेफिनेट है कि इसकी आंख नहीं खुलेगी। तीनों इंतजाम कर दिए गए, वहां तो मुरझाया हुआ फूल भी नहीं पहुंचता था, मुरझाया हुआ आदमी तो छोड़िएगा, उसकी सेवा में कोई वृद्ध नहीं जाता था, उसकी सेवा में सब युवा लोग ही जाते थे, और फूल भी इससे पहले कि वे मुरझाएं वहां से हटा दिए जाते थे, और राजमहल के बाहर निकलना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि यदि राजमहल के बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई मृत देह तो दिखाई ही पड़ जाएगी इतने बड़े राज्य में, इसलिए राजमहल में ही सारी सुख सुविधाओं के साधन जुटा दिए गए, और अपने लायक सोचने का, अपने जीवन के बाबत सोचने का वक्त न मिले इसके लिए इंतजाम था सुरा और सुंदरी का, ये इंतजाम होते हैं। इतना दाखिल कर दिया उसको पैदा होते ही साथ कि वो अपने बाबत सोच न सके। हमने भी शायद वो रोशनी जो हम लेकर के यहां आए थे उस रोशनी को हम ही ना देख पाए, इसके लिए हमने भी अपने चारों तरफ अपने हाथ से इंतजाम किए हैं। सोचना पड़ेगा, हमने किए हैं इसलिए सोचना पड़ेगा, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, कोई और हमसे थोड़ी कह रहा है, मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, जो बात आप मुझसे करेंगे वो बात मैं आपसे कर रहा हूं, मुझे थोड़ी सी बातें मालूम है इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल मत समझिए कि मैं आपको कोई उपदेश दे रहा हूं, कोई नैतिकता आपको सिखा रहा हूं, कोई आपको धार्मिकता सिखा रहा हूं, नहीं, आपकी रोशनी आपके पास है, हम सबके पास है वो रोशनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हाथों में ढक गई हो और हम न देख पा रहे हो, अगर नहीं ढकी हो तो छोड़ दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं, और अगर ढक गई हो और हमने अपने हाथ से ढक ली हो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम बेसारे कारण दूर कर सकते हैं जिनसों की हमारी आंख बंद है। एक आध्यात्मिक अंधापन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एक भौतिक उपलब्धियों का युग तो है लेकिन एक आध्यात्मिक अंधेपन का युग, और जिसकी वजह से जो कुछ भी आज हो रहा है देश में, जिसके लिए हम चिंतित हैं, जिसके लिए हमें चिंतित होना चाहिए, उस सब का मेजर कॉज क्या है, मेजर फैक्टर क्या है, कहां से ये चीज प्रकट होती है। अगर आज जीवन में अंधापन ना होता तो ये अंधेपन के जो काम हो रहे हैं वो क्यों होते हैं? अंधेपन के काम बंद किए जा सकते हैं लेकिन अंधापन खत्म करना पहले जरूरी है। लेकिन कितने भी उपाय कर लिए जाएं पर जो कुछ घटित होना है वो तो होता ही है। एक दिन युवाओं का सम्मेलन था और बुद्ध 20 वर्ष के हो चुके थे, उन्हें जाना जरूरी था, भेजा गया, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, कोई वृद्ध व्यक्ति रास्ते में ना दिखाई पड़े, कोई मरी हुई देह दिखाई ना पड़े, और सारथी को हिदायत दी गई कि वो निरंतर उलझाए रखे बुद्ध को जब तक कि वो रास्ते में जा रहे हैं। हमने भी तो शायद ऐसे ही किया है, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत मुश्किल पड़ती है अपने बाबत छाती पर हाथ रख के शाम को बैठ करके कि दिन भर में क्या किया मैंने और मुझे क्या करना था, इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, 5 मिनट भी नहीं है, बहुत सारे काम हैं, बहुत व्यस्त हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ है हमारी, या कि हम कोई प्रोफेसर हैं या कि बिजनेसमैन हैं, हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं भाई, हमारे पास इतना वक्त नहीं है इस छोटे से काम के लिए, अपने बाबत 5 मिनट सोचें, वो भी वो दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं, वो सोचें, मेरे बाबत तो उनको फुर्सत है। और वाकई ऐसा है, आज हमें अपने बाबत सोचने की फुर्सत नहीं है, दूसरे को हमारे बाबत सोचने की बहुत फुर्सत है, उसको भी अपने बाबत सोचने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसको फुर्सत कहां से मिलेगी जब वो दूसरे के बारे में सोच रहा है। बड़ा मजा है, सब एक दूसरे के लिए चिंतित से मरीज है, कोई अपने जीवन के प्रति चिंतित नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं अपने जीवन के लिए, बल्कि मेरा जीवन विकसित होता है, एक एक यूनिट ये सोच ले, एक एक इकाई ये सोच ले देश की, कि उसे अपना जीवन का विकास करना है तो पूरा देश एक एक इकाई से मिलकर ही तो बना हुआ है। समूह किसका नाम है? जहां इकाई इकट्ठी होती वही तो समूह होता है। समूह यदि गलत करता है तो मानिए वह एक एक इकाई इंडिविजुअली रॉन्ग, वो गलत है। लेकिन सारा दोष हम समूह के मत्थे डाल देते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को सेव कर लेते हैं। आई एम ओके, यू आर रॉन्ग। बहुत आसान है ये कहना, लेकिन ये कहना बहुत कठिन है कि आई एम ओके यू आर ऑल्सो। मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हैं, आप अपने संदर्भ में ठीक हैं, मैं अपने संदर्भ में ठीक हैं। चले हम क्यों ना एक ही संदर्भ में इस चीज का विचार करें और इधर देखिएगा, वो तो निकल गए हैं यात्रा के लिए, युवाओं के संबोधन में चले जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी बुद्ध की दृष्टि में आया एक बूढ़ा लाठी टेकता जर्जर शरीर पहली बार देखा था। बुद्ध के पिता भी थोड़ा सा गड़बड़ कर गए। अगर बार बार किसी चीज को दिखा दिया होता जैसा कि हम करते हैं अपने बेटे को साथ, अगर बार बार उस चीज का टच करवा दिया होता तो फिर उसके प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता। लेकिन 20 वर्ष तक जिसने कभी बूढ़े को देखा नहीं उसका इंटरेस्ट तो नेचुरल। हमारे साथ यही तो हुआ, हम तो रोज मरते हुए देखते हैं किसी ना किसी को, किसी के मरने से अब ज्यादा हमारे भीतर कुछ धड़कता नहीं है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोज हम न्यूज सुनते हैं, रोज हम खबरें सुनते हैं, हमारे भीतर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहली पहली बार जब किसी चींटी पर भी पैर पड़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती, फिर उसके बाद तो आदमी पर भी पड़ जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती। शायद हम एडिक्ट हो गए, लेकिन बुद्ध तो अभी इन चीजों के जरा भी अभ्यासी नहीं थे। उन्होंने देखा कि ये जीव शीर्ण सा शरीर, ये क्या हुआ इसको? सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा कि ये बूढ़ा है। तो क्या सारथी ऐसा बूढ़ा सबको बजाना पड़ता है? क्वेश्चन देखिएगा कितने मजे का क्वेश्चन है, हम शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। सारथी ने कहा कि हां राजन, हां राजकुमार, ऐसा सबको बूढ़ा हो जाना पड़ता है। तीसरा प्रश्न, कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति पूछ सकता है, और वो प्रश्न था बुद्ध का कि क्या मुझे भी ऐसा ही व्रत हो जाना पड़ेगा? अब तो सारथी भी घबराया, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस उसको नहीं दिए गए थे कि ऐसा जवाब देना। उसने कहा कि राजकुमार अब भी और हम सब भी एक दिन इसी स्थिति से गुजरेंगे। बुद्ध ने कहा कि ठहरो, इससे पहले कि युवाओं के संबोधन को संबोधित करने में जाऊं, मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया। मुझे अब अपनी देह ऐसी ही जर्जरित जीर्ण शीर्ण दिखाई पड़ती है, आंख थोड़ी सी खुल गई है। बेटे को बचपन में मरघट नहीं ले जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आंख खुल जाए और यह समझता है कि एक दिन इसको मरना पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे परिचय कराते हैं, बहुत धीरे धीरे परिचय कराते हैं ताकि फिर वो मरने से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। पर बुद्ध की आंख धीरे से खुल गई। उन्होंने कहा कि वापस लौटो, अब युवाओं की सभा में जाने का कोई मकसद नहीं है। और जैसे वापस लौटाया गया तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। उन्होंने तो आगे आगे ठीक करके रखा था, पीछे का मामला तो गड़बड़ था। रथ पीछे मुड़ गया, रथ पीछे मुड़ा तो जितनी भी राज्य की व्यवस्थाएं थी गड़बड़ाई, और रथ निकलता था कि सामने से एक मृत देह अर्थी पर जाती हुई दिखाई पड़ गई। बुद्ध ने कहा कि ये कौन है? उसने कहा कि मरा हुआ व्यक्ति है। साथी मैं तुमसे पूछता हूं, क्या क्या इसी तरह सबको एक दिन मर जाना पड़ता है? सारथी ने कहा कि हां राजकुमार, एक दिन सबको मर जाना पड़ता है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा ठहरो सारथी, मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूं, और आखिरी प्रश्न, कि क्या एक दिन मुझे भी इसी तरह मर जाना पड़ेगा? कितना प्रश्न है। ये प्रश्न तो हमने किसी से क्या अपने से भी नहीं पूछा होगा, तभी मैं पूछना चाहते हैं। तो इंग्लिश में हमसे पूछे कि हाउ ओल्ड आर यू, तो हम आसानी से बता देंगे कि 25 साल के हैं, लेकिन अगर वो हिंदी में पूछ लो कि कितने मर गए हो आप, तो बहुत मुश्किल होगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण शायद हम अपनी उम्र बताते समय 40 वर्ष के मर चुके हैं, हम ये कहने में बहुत घबराते हैं। और ऐसा प्रश्न पूछ लिया सारथी से, सारथी भी घबराया कि क्या होगा। सारथी ने सिर झुका करके धीरे से कहा कि हां, यहां सबको मरना पड़ता है राजकुमार, आपको भी मरना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा कि मैं तो इसी क्षण मर गया। सारथी रथ रोको और बुद्ध उतर करके, तब तक तो राजमहल के निकट पहुंच चुके थे, राजमहल के ऊपर की छत पर जाकर यहां से वहां, वहां से वहां टहलने लगे। अब उनके पास ढेर सारा वक्त था अपने बाबा सोचने के लिए। अब सारे ऐशो आराम की चीजें एक तरफ हो गई, राज सम्राट भी परेशान, लेकिन बुद्ध ज्यादा दिन नहीं रुके, आंख खुल चुकी थी, बाहर निकल गए। उस रोशनी से परिचय हो गया जो अपने हाथ से इन सारे आवरणों से ढक कर रख दी गई थी। पता नहीं हम कब अपने हाथ से उन आवरण को हटाएंगे और कब अपने जीवन की उस रोशनी का एहसास कर पाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसमें हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है और हम बना सकते हैं। अपने जीवन के विकास के लिए हम बात कर रहे हैं। अपने जीवन के विकास के लिए पहली जरूरत है कि हम पहचाने कि हमारी रोशनी कैसी है। इन सारी चीजों से थोड़ा सा विश्राम लेकर के ही हम उसको पहचान पाएंगे। पर क्या करें, हमने बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। दो तरह की पहल आज के समय में है। अब थोड़ा सा इसको भी देख लें कैसे दौड़ है। एक तकनीकी दौड़ है, एक टेक्नोलॉजी की दौड़ है, और एक धार्मिक लोगों की दौड़ है। दोनों दौड़ रहे हैं। तकनीकी की दौड़ इतनी तेज है कि हमने ऐसे यंत्र बना लिए हैं कि कम समय में ज्यादा काम हम कर सकते हैं, और हमें इस बात का गर्व है, होना भी चाहिए कि कम एनर्जी, कम टाइम और ज्यादा वर्क, ज्यादा काम। पर ऐसा करके हमने मालूम क्या करा है, हम स्वयं भी यांत्रिक हो गए हैं, हम स्वयं भी एक बहुत अच्छे कंप्यूटर हो गए हैं। कंप्यूटर बनाने वाला कभी कंप्यूटर से छोटा हो सकता है, पर हम भूल गए हैं। अब कंप्यूटर बड़ा हो गया है, कंप्यूटर बनाने वाले की उतनी कीमत नहीं है जितनी कंप्यूटर की कीमत है। एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी थी जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के बनाए हुए आर्ट सेल किए जा रहे थे। और एक बहुत बड़ा आर्ट, बहुत बड़ी आर्ट था, एक मां अपने बेटे को दूध पिला रही थी, और वो वाला फोटोग्राफ $3 लाख में बिका। $3 लाख बहुत बड़ी कीमत होती है, ₹3 लाख भी बड़ी कीमत है, फिर $3 लाख तो बहुत बड़ी कीमत है, ₹36 का लगभग $1 होता है। लोग अचरज में पड़े, और सुंदर फोटो था, बाहर निकले आर्ट गैलरी से जिसने खरीदा था, इतनी बड़ी कीमत देकर के वो इतने छोटे से फोटोग्राफ को लेकर, बहुत सुंदर फोटोग्राफ था, लोग उसके चारों तरफ घिरे थे कि एक नजर हम भी देख लें। और जैसे ही बाहर निकले तो उसने एक बार अपने फोटो को देखा, और एक बार सामने बैठी हुई एक मां को देखा, एक बार तो वो चौंक गया, उसने फिर देखा तो उसके गोद में वैसा ही बेटा है जैसा बेटा इसमें है, और ये मां का चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस फोटो में है, लेकिन वो भीख मांग रही थी, वो एक एक दाना मांग रही थी, जिसके फोटो को किसी आर्टिस्ट ने बना करके $3 लाख में बेचा था, वो स्वयं जीवित, जिसका फोटो दिखा है $3 लाख में, वो स्वयं जीवित एक एक दाने के लिए बैठी हुई है। चेतना जो जो कुछ करा वो हमेशा से ऊंचाइयां छूता रहा। आज हम इतने स्वचालित, इतने ऑटोमेटिक, इतने यांत्रिक हो गए हैं कि अब हमें अपने जीवन की संवेदनशीलता का भी ख्याल नहीं रहा। अब हम भी उस यंत्र की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं। हमने स्वयं को भी यंत्र बना लिया। काश यंत्र हमने बनाए होते पर हम यांत्रिक ना होते तो अच्छा होता। एक दौड़ ये भी है। दूसरी दौड़ और है, वो धार्मिक लोगों की दौड़ है। देश से बिल्कुल अलग है खड़े हुए लोग हैं, उनसे उन टेक्नीशियंस का कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिलीजियस लोग हैं, इनकी दौड़ अलग है। इनकी दौड़ सुबह से शुरू होती है, शाम तक चलती है। इनके सब चीजों के टाइम निर्धारित है। अभिषेक का समय निर्धारित है, ठीक 7 बजे होगा। आप आ पाए तो आ पाए, आपका मन 10 बजे करने का है नहीं कर सकते, आप दूसरा मंदिर बना लीजिएगा प्लीज। वहां बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं जयपुर में, खरीद के ले आइएगा। लेकिन हमारे इस मंदिर में 7 बजे के बाद नहीं, मतलब इस प्रोसीजर है, घंटी बजेगी, जल की धारा ऊपर से डाली जाएगी, सिर्फ ओनली वन इन डे, वन से डे। मेरे ख्याल से तब ये भी कर देना चाहिए, बस पूरे जीवन में एक बार, जैसे कि एक टेबलेट आती है वंस ए लाइफ वन इन डे, एक बार खानी पड़ेगी और जिंदगी में एक दिन में एक बार, बस ऐसे ही शायद कंप्यूटराइज, वो भी एक मैकेनाइज प्रोसीजर है। उसमें भी हम यांत्रिक होते चले जा रहे हैं। हमारे अभिषेक की प्रक्रिया यांत्रिक है, हमारे पूजा की प्रक्रिया यांत्रिक है, उठा करके इसमें रखना है, कहीं ना कोई भावात्मकता। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं मान रहा हूं मैं, दोनों अधूरे लोग हैं। जो यंत्र की तरह यांत्रिक हो गए हैं, ऐसे ही कुछ सारी क्रियाएं कर लेने का नाम धर्म नहीं है। जैसे वहां कुछ चीजें आजाद कर लेने का नाम विज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसे ही कुछ धार्मिक क्रियाएं दोहरा लेने का नाम धर्म नहीं है। धार्मिक एटीट्यूड चाहिए, रिलीजियस एटीट्यूड चाहिए। वहां पर साइंस, वहां पर जैसे हमें टेक्निकल एटीट्यूड चाहिए, हर चीज को एक परिणय से, एक सुव्यवस्थित और सुनिश्चित ज्ञान का नाम विज्ञान है, भौतिक ज्ञान का नाम विज्ञान नहीं है। एक सुव्यवस्थित हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, कैसे मैं अपने को मैनेज करूं, क्या टेक्नीशियन, क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है कि मैं अपने को इस तरह से व्यवस्थित करूं ताकि किसी को धक्का ना लगे मेरे जीवन से, ताकि किसी का जीवन मेरे द्वारा स्पॉइल ना हो, मेरे द्वारा वो नष्ट ना हो सके। कैसी कोई तकनीकी, कैसा कोई केमिया, कैसी कोई प्रोसेस हमने की है वहां उस क्षेत्र में, मैं तकनीकी वाले लोगों से पूछ रहा हूं। और इसी तरह यहां जो लोग धार्मिक क्रियाएं सुबह से शाम तक, वो जो समय होता है कि सामायिक करने का तो सामायिक करने का समय है, भक्ति करने का तो भक्ति करने का समय, सुनने का तो सुनने का समय, बस एकदम व्यवस्थित है ना, एकदम मैकेनाइज्ड। टाइम हुआ, भावनाएं बनी कि नहीं बनी, इससे क्या लेना देना, प्रोसीजर पूरा है, परफेक्ट है। प्रोसीजर परफेक्ट होना चाहिए, आप भले इम्परफेक्ट रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत साफ सी बात कर रहे हैं अपन, आप इसमें बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई चीज कह रहा हूं कि ये प्रक्रिया बदल दीजिएगा, नहीं, आप करिएगा पर सोच लीजिएगा, जो जो हम प्रक्रियाएं कर रहे हैं क्या उन प्रक्रियाओं के पीछे हमारी कोई अप्रोच है, हमारी कोई रोशनी पाने की दृष्टि है, नहीं है तो हम क्या करें। हम इन सब प्रक्रियाओं को बंद कर दें क्या, नहीं, इन प्रक्रियाओं को भी बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इन प्रक्रियाओं को ठीक से देखने की आवश्यकता है। इनके पीछे छुपे हुए उद्देश्य को हम देखें कि क्या उद्देश्य लेकर के मैंने पूजा की थाल, मैंने तो शायद जो पुराने लोग थे उन्होंने तो मुझे यही प्रक्रिया सौंपी होगी कि जब जब भी भगवान के निकट आना हो तब तक उनके ऊपर जल की धारा छोड़ना, वे तो पवित्र हैं, उनकी पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए एक बार जरूर भगवान के निकट आकर के और अपनी पवित्रता की कामना से उनके ऊपर जल की धारा जो अपने को परम पद में अभिषिक्त करने के लिए प्रक्रिया की जाए, उसका नाम अभिषेक है। अपने भीतर अपने आत्मनिरीक्षण के लिए कि जो मैं क्षुधा रोग विनाश नहीं चढ़ाता हूं तो मेरी भूख थोड़ी शांत होती कि नहीं। जब मैं क्षुधा रोग विनाश नहीं निवेदन चढ़ा के बाहर निकलता हूं और घर पर थाली सामने आती है तो मेरी क्षुधा का क्या हिसाब होता है। जब जब मैं चंदन चढ़ाता हूं और बाहर निकलता हूं तो दूसरे के घाव पर चंदन लगाता भी हूं या कि ऐसे ही निकल जाता हूं, दूसरे को थोड़ी शीतलता पहुंचाता हूं या कि नहीं। मैं जब पानी चढ़ाता हूं, जल चढ़ाता हूं तो उसके पीछे जो मिक्सअप होने का नेचर है पानी का, जहां जैसा भी मिक्सअप होना वहां मिक्सअप हो पाता हूं। जब मैं फल चढ़ाता हूं तो क्या मैं संसार के फल चाहता हूं या कि उस मोक्ष फल को चाहता हूं, या कि इन्हीं फलों में उलझे रहना चाहता हूं जो मुझे छोटे छोटे से फल यहां संसार में मिल जाते हैं। इतना थोड़ा सा सोचना शुरू करना पड़ेगा, इतना थोड़ा सा भावात्मक होना पड़ेगा और वहां यह सोचना पड़ेगा कि जिस तकनीक का विकास मैंने किया था वो किसके लिए किया था। मैंने अपने जीवन के विकास के लिए किया था या कि ये तकनीक मेरे ऊपर हावी हो जाए। मैंने पैसा अपने जीवन के लिए ईजाद किया था या कि पैसा मुझे ईजाद कर रहा है। मैं पैसे का गुलाम हूं या कि पैसा मेरा गुलाम है। ये जो भी आंतरिक जीवन है उस सबसे थोड़ा सा हमें संवेदनशील तो,
चाहे वो भौतिक जीवन जी रहा हो, बिल्कुल सांसारिक जीवन जी रहा हो, लेकिन एक असंतोष उसके भीतर है कि कुछ है जो कि मिस कर रहा। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा ध्यान उस तरफ भी जाए कि सारी प्रक्रियाएं कर लेने के बाद, ठीक ठीक प्रक्रियाएं कर लेने के बाद भी आखिर क्या है कि हम जीवन को ठीक देख नहीं पा रहे हैं, जीवन को ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। और उसका एक ही कारण है कि जहां हमें जिस तरह भावनात्मक होना था वहां हम भावनात्मक और संवेदनशील ना होकर मैकेनाइज्ड हो गए हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो। एक बहुत छोटी सी घटना, शायद वो घटना हमारे जीवन को थोड़ा सा भावात्मक बनाए। मैं बहुत अधिक नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं कि व्यक्ति के भीतर यदि भावनाएं हैं, व्यक्ति के भीतर यदि पवित्र भावनाएं हैं तो वो अपने जीवन को तो अच्छा बना ही सकता है, वो अपने आसपास भी खुशबू बिखेर सकता है। हमें एक छोटे से पेड़ से भी ये शिक्षा ले लेनी चाहिए कि वो जब पौधा होता है तब भी लोगों के काम आता है, पेड़ हो जाता है बड़ा तो फल फूल और छाया देता है, कोई उसके नीचे अपना, छोटी छोटी चिड़ियाएं आकर अपना घर बनाना चाहें तो उस पेड़ पर अपना घर बना लेती हैं। जब तक पेड़ जिंदा रहता तब तक खुशबू देता है, और हम तो पैदा होने से लेकर के मरने तक क्या अपने चारों तरफ खुशबू बिखेर पाते हैं? क्या किसी को थोड़ी सी जगह दे पाते हैं अपने आसपास घर बनाने के लिए? क्या किसी के लिए हम फलवान हो पाते हैं? अगर इतना सा भी हम सोच लें, और इन सब के पीछे है क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंप्यूटर पर काम ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑफिस जाना कल से बंद कर दें, पर मैं क्यों ऑफिस जा रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आदमी ना रह जाऊं और सब कुछ बन जाऊं? कभी कोई व्यक्ति इस तरह परिचय नहीं देता है, सब परिचय देते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं। अच्छा, और उसकी पूंछ भी होती है बहुत अधिक। कोई अगर कह दे कि मैं डॉक्टर हूं तो फिर तो सिर आंखों पे लिया जाता है उसको, और अगर वो कहे कि मैं आदमी हूं, हाँ तो बैठो फिर वहां, थोड़ा साइड में बैठो, किसको वहां से, वो आ रहे हैं, वो प्रमुख हैं वो। अब आदमी होने की इज्जत नहीं है, अब उसके साथ जो ओहदा है, उसके साथ जो नाम जुड़ा हुआ, उसकी कीमत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि नाम भी अच्छी चीज है, ओहदा भी अच्छी चीज है, फिर भीतर का आदमी नहीं मर जाना चाहिए। धर्मात्मा कहलवाना अच्छी चीज है, धार्मिक क्रियाएं अच्छी चीज है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई आदमियत नहीं मर जानी चाहिए, उसके पीछे छुपी हुई धार्मिक दृष्टिकोण नहीं मर जाना चाहिए। मंदिर जाते समय 16 के कपड़े पहने पहने भी अगर कोई दीन दुखी मिल जाए तो मैं अपने 16 के कपड़ों की चिंता ना करूं कि फिर से पहन लूंगा, पर अभी इस दीन दुखी की मुझे मदद करनी है। अगर ऐसा भाव जागृत हो जाए तो मंदिर जाना उसी दिन से सार्थक होना शुरू हो जाएगा। अभी तो एक झटके में अपनी स्कूटर से मंदिर तक आते वक्त कितने छोटे मोटे और बड़े बड़े जीवों को हमने मार दिया होगा, उसका कोई विचार नहीं है। अभी तो हम इतने मैकेनाइज्ड हो गए हैं, संभल संभल के एक एक पैर रख के मंदिर नहीं आ पाते हैं, और दुनिया में कहीं भी घूमे भैया, पर मंदिर तो सधे पांव से, सधे मन से। बहुत सधा मनोज, बहुत सधे पांव से भगवान के दरबार तक आ पाएंगे, वरना भगवान के दरवाजे तक तो नहीं आ सकेंगे। जो सरहदे अक्ल से गुजरे, जो सरहदे अक्ल से गुजरे तब आ पाए हैं यहां, वरना तेरे द्वार पर आना आसान न था। जो इस अक्ल की, इस बुद्धिमानी की, इस मशीनीकृत जीवन की सरहद से जब गुजरा हूं तब आपके यहां तक आ पाए हूं, वैसे तेरे द्वार तक आना आसान नहीं था। ये बुद्धि जो भावनाओं से समन्वित है वो अच्छी है, और ये बुद्धि जो हमें सब तरफ से शून्य करती चली जा रही और एक यांत्रिक क्रिया को देती चली जा रही है, उस बुद्धि को हम थोड़ा सा भावनाओं का टच दें। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बुद्धि के करिश्मे हमारे सामने हैं, पर कभी भावनाओं के करिश्मे भी हम अपने जीवन में देखना शुरू करें। भावनाओं में भी बहुत बड़ी ताकत है। जो प्रॉब्लम्स बुद्धि शायद सॉल्व नहीं कर पाती है, भावनाएं उन प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर देती हैं। कोशिश करिए भावनात्मक होने की, संवेदनशील होने की। मैं आपसे जो कह रहा था कि एक घटना आपको सुनाऊं कि शायद आपके जीवन में भावनाएं थोड़ी सी जागृत हों, आपके जीवन में नहीं, हम सबके जीवन में। मैं बार बार भूल जाता हूँ, मैं आपको अपने से अलग कर लेता हूँ, क्या करूँ, आपने इतनी ऊँचे बिठाल दिया है। इस वजह से ऊंचाई पर बैठने से ऊंचा नहीं होता कोई, मैं ये जानता हूँ बहुत अच्छे से। हम सबको बहुत ऊंचे होना है, उतने ऊंचे जितने हमारे भगवान वहां तक पहुंच गए हैं, उतने ऊंचे। छोटी छोटी ऊंचाइयां पाकर के हम गाफिल ना हों। एक सदाशिव नाम का युवक था, उसका मन था कि वो बहुत पढ़े, बहुत विद्वान बने। उसके पिता का भी मन था कि बेटा विद्वान बने, समझदार बने। पिता ने कहा कि किसी गुरु के चरणों में शिक्षा लेके आओ, गुरुकुल में पढ़ाई करो। 12 वर्ष गुरुकुल में वो रहा और 12 वर्ष तक पिता इंतजार करता रहा। 50 वर्ष के पिता का वो बेटा था जब उसने भेजा था। अब पिता भी बूढ़ा होने को था और राह देखता था कि 12 वर्ष में बेटा विद्वान बन के लौटेगा, वो सारी चीजें जान के लौटेगा जो उसे जान लेनी चाहिए। हर पिता अपने बेटे से यही अपेक्षा रखता है, आज भी रखता है कि बेटा वो सारी चीजें जान ले। अब थोड़ा सा कम हो गया है, अब तो मेरा बेटा इस तरह का बन जाए कि दुनिया में ठीक से खप जाए। मैंने कोई बड़ी बात तो नहीं कह दी, दुनिया में ठीक से खप जाए, दुनिया के लायक हो जाए, वो आउटसाइडर घोषित ना कर दिया जाए, वो इतना मिक्सअप हो जाए अगर उसको कहीं दुनिया में रह करके पाप करना पड़े तो पाप में भी हिचकिचाहट ना हो, तभी तो खप पाएगा। ईमानदार रहेगा तो आउटसाइडर घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए पिता ये नहीं कहता कि मेरा बेटा बेईमान हो जाए, मेरा बेटा खप सके, दुनिया के लायक हो सके, इतना बनाना जरूरी है। अगर दुनिया अंग्रेजी बोलती है, दुनिया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना अच्छा समझती है, तो मेरा बेटा अंग्रेजी बोले, मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, यही तो। इससे मतलब नहीं है कि मेरा बेटा जो जानने लायक है वो जाने, मेरा बेटा दुनिया को ठीक ठीक जान सके ताकि दुनिया के लायक हो सके। लेकिन वो जिसका बेटा था वो ये नहीं चाहता था कि ये सब दुनिया को जाने, वो चाहता था कि अपने को ठीक से जान सके, ऐसा कोई ज्ञान लेकर के लौटे। 12 वर्ष के बाद बेटा लौटा तो नेचुरल था, 12 वर्ष में इतनी सारी विद्या, जितनी सारी पढ़ाई हो सकती थी वो सारी पोथियों की पढ़ाई वो करके लौटा था। और जब कोई पोथियों की पढ़ाई सीख लेता है तब फिर देखिएगा क्या स्थिति होती। पिता इंतजार कर रहा है दरवाजे पर कि बेटा लौटेगा, रोज खड़ा होता था दरवाजे पर कि आज लौटेगा, आज लौटेगा। और एक दिन ऐसा आया कि लौटा, लौटा बेटा। दूर से आते दिखा तो पिता हर्षित हुआ कि आता है बेटा, सीख करके लौटा है। और जैसे ही निकट आया तो पिता को जो अपेक्षा थी कि सचमुच कुछ जान के लौटा होगा, पर पहली नजर में पिता ने देखा कि कुछ जान के नहीं लौटा है, जानने का भ्रम लेके लौटा है। हम सब के साथ भी ऐसा है, हम जितना अधिक जानते हैं वो सब जानने का भ्रम है अगर अपने को नहीं जाना तो। और हुआ क्या कि जैसे ही जानने का भ्रम था उसको, तो पिता के सामने आते ही ऐसे उसने हिराकत की नजर से देखा कि जैसे कोई कीड़े मकोड़े को देखता है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा लौट कर आई, पिता तो दूसरी कक्षा फेल हुआ है, मैं तो 12 साल तक पढ़ के लौटा हूं, आज भी देख लो पिता से थोड़ी ज्यादा पढ़ाई हो जाती है बेटे की, या कि मां से थोड़ी ज्यादा पढ़ाई हो जाती है, और मां अगर एक कटोरी उठाने के लिए कहे, एक गिलास पानी भर के देने के लिए कहे, तो पिता कहेगा कि नौकर को बुलाओ, मुझे अभी पढ़ना है। तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा हूं, मैं बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहा हूं, तुमने तो शायद इमेज भी नहीं किया होगा। मां भी सोचती कि मेरा बेटा बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहा, दबी दबी फिरती है अपने बेटे से कि सचमुच मेरा बेटा बहुत बड़ी पढ़ाई, मैं तो जानती भी नहीं कि कौन सी पढ़ाई, कोई अगर पूछे उससे तो कहती कि बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहा, वो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है, मैंने उसका नाम लिखा है वहां पर कॉलेज, वो इसी बोझ से दबी हुई है कि मेरा बेटा बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहा है। हर माता पिता आज इसी बोझ से दबा हुआ है, वो एहसास नहीं करता, वो उस बोझ को अच्छा मान रहा है, तभी तो खुश होता है, वरना इस भ्रम को लेकर के जीने वाले से कोई खुश हो सकता है? जब एक पिता ने पिता के पास जाकर के बेटे ने पैर छुए थे और पिता ने कहा, पिता से कहा था कि नाउ आई एम द मास्टर ऑफ साइंस, अब जबकि मैं एमएससी कर चुका हूं, मैं साइंस का मास्टर हूं, तो पिता ने कहा कि आर यू नो व्हाट डू मीन बाय द सोल एंड नॉन सोल, और यू नो व्हाट इज द यूनिवर्स? उसने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि क्या यूनिवर्स है, क्या लोक है, क्या आलोक है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है। तो फिर तुम कैसे साइंटिस्ट हो, मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी किसी एक विषय में हो गए तुम, लेकिन अभी तुम्हें अपने आत्मा के विषय में कोई साइंस नहीं मालूम, जाओ और पढ़ना। आज के पिता की बात कर रहा हूं, एक ऐसा पिता भी था मुझे सन 86 में मिला था, जिसने अपने बेटे से कहा था, और ऐसा ही वो पिता था, उसने धीरे से देखा कि बेटा कैसे लौटा है, बेटे के चाल से मालूम पड़ गया कि सीख के कम लौटा है, सीखने के भ्रम में ज्यादा लौटा है। क्यों? क्योंकि हिराकत की नजर से पिता को देखा, और दरवाजा देते ही था कि पिता अकेले खड़े हो सकते थे, बाजू में इतनी जगह भी नहीं थी कि वहां से निकला जा सके, तो पिता की तरफ आंख बिना उठाए और थोड़ा सा उनको हटा करके, और वो भीतर घुस गया। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की तो बात छोड़िएगा, कोई आदर नहीं, जो प्रतीक्षा में खड़ा है उसका कोई आदर नहीं। और सीढ़ियां चढ़ता चला जाता था, पिता हक्का बक्का पीछे देख रहा था। हर पिता आज हक्का बक्का अपने बढ़ते हुए बेटे के कदमों को देखता है, कहां जा रहे हैं ये कदम। वो बहुत दुखी हुआ, उसने आवाज दी, आधी सीढ़ियां चढ़ते बेटे को आवाज दी, पढ़ के लौट आए बेटे, सब सीखा होगा। पीछे मुड़के देखा, हां सब सीखा है। क्या समझते हो, ऐसे जैसे कहा नहीं उसने, क्या समझते हो सब सीख क्या है? बेटे बस एक चीज पूछनी है, क्या यह भी जाना कि जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता? क्या यह भी पाया जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता? ये दो चीजें तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें जरूर बताई होंगी, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, और जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। जो एक गम जाने ही सो सब्वम जाने ही, जो एक गम अभी न जाने ही सो सब्वम अभी न जाने ही। जो एक को अपनी आत्मा को जान लेता है वो सबको सारे जगत को जान लेता है, और जो अपने एक को नहीं जान पाता उसका सारे जगत को जानना भी व्यर्थ हुआ जाता है। क्या तुमने उसे जाना? अब बेटा चौंका, अगर किसी बुद्धिमान आदमी से कह दिया जाए कि वो ये चीज जानता है कि नहीं, तो उसकी तो बूढ़ी बुद्धिमानी दांव पे लग गई, वो सोच में पड़ गया कि ये तो नहीं मालूम अपने को, गुरुजी ने फ्रॉड किया। अभी तक तो पिता के ऊपर था गुस्सा, अब पिता के ऐसा प्रश्न पूछने पर कि जो जानने योग्य था वो जाना कि नहीं जाना, और जो पाने योग्य था वो पाया कि नहीं पाया, अब सारी जिम्मेदारी अब पिता की तरफ से दृष्टि हट गई। अब तो गुरु ने मेरे साथ धोखा किया, जिस गुरु ने 12 बरस तक पढ़ाया, विद्या सिखाई, एक एक चीज समझाई, अब वहीं खड़े खड़े उस गुरु के प्रति उसके मन में अविश्वास हो गया, उल्टे पांव वापस लौटा, अपने दरवाजे के भीतर भी नहीं घुसा कमरे में। बुद्धिमान आदमी के साथ मुश्किल ये है, जरा सा टोक दीजिएगा उसके ज्ञान के बारे में, फिर देखिएगा। हम सबके साथ है, जहां जहां हम थोड़ी बुद्धि का उपयोग करते हैं ऐसे ही तो होते हैं। हम थोड़े भावनात्मक हो जाते हैं तब हम स्वीकार कर लेते हैं, वरना कहां स्वीकार करते हैं। बुद्धि की अकड़ बहुत बड़ी है। बुद्धि जो एनालाइज करे उसका नाम बुद्धि, और जो सिंथेसाइज करे उसका नाम भावना, और कोई बड़ी परिभाषा नहीं है। जो सबको जोड़े, सिंथेसाइज करे, जहां सिंथेसिस हो, जहां संवाद हो सके, समझना कि वहां पर भावनाएं हैं, और जहां पर वाद विवाद, थेसिस एंटीथेसिस हो, या कि सब सारा एटीट्यूड एनालिटिकल हो, हर चीज को डिसेक्ट करके देखा जा सके। आप डिसेक्ट कर लीजिएगा, क्या मिलेगा इसमें, फैला दीजिएगा टेबल पर और निकाल दीजिएगा, अलग अलग लीवर मिलेगा, अपना फंक्शन करता हुआ हार्ट मिलेगा, ब्रेन मिलेगा, और क्या मिलेगा कि भीतर कोई भावना मिलेगी, कोई आत्मा वात्मा मिलेगी, कुछ कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप अगर एनालाइज करेंगे तो, और आप सबको इंटीग्रेट कर देंगे, आपको चेतना मिलेगी, वहीं पर है वो। इतना ही फर्क है। उसकी बुद्धि को ठेस पहुंची, वापिस लौटा, सीधे जाकर के अब गुरु के पास पहुंचा कि आपने मेरे साथ धोखा किया। पिता पूछते हैं कि तुमने वो जान लिया जो जानने लायक था, तुमने आपने मुझे वो क्यों नहीं बताया कि जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, और वो क्यों नहीं मुझे दिया जिसके पा लेने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। गुरु ने कहा कि वो दिया नहीं जा सकता, वो बताया नहीं जा सकता। जो बताने लायक था, जो देने लायक था, वो मैंने तुम्हें दिया, बताया। अगर तुम उसको पाना चाहते हो जिसके पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं, उसको जानना चाहते हो जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं, तो एक काम करो। उसने कहा सब करने तैयार हूं, पर मैं नीचा होना नहीं चाहता, तो जाओ आश्रम में 500 गायें हैं, इन 500 गायों को ले जाओ किसी घने जंगल में जहां कोई आदमी ना हो, सिर्फ तुम हो और 500 गायें हो, और जब ये 500 गायें 1000 हो जाएं तब तुम वापस लौट आना। 500 गायें 1000 होने में तो बहुत टाइम लगेगा, पर यदि तुम्हें जो जानने लायक है वो जानना हो, जो पाने लायक है वो पाना हो, तो ले जाओ। और चला गया वो युवक, चला गया। अब उसके चारों तरफ गायें थीं, और गायों के बारे में तो आप जानते हैं, उनकी आंख में देखिएगा भोलापन है, उनके जीवन में झांक के देखिए, सब तरफ सरलता है, सब तरफ संवेदनशीलता है, मृदुता है, वहां कोई बुद्धि का उपयोग नहीं है, वहां तो सिर्फ भावनाओं में जीती हैं वे। और ये पहुंचा, वहां कोई बात करने वाला भी नहीं था, धीरे 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 उन गायों के बीच रह करके वो उन्हीं के जैसा हो गया, बस चुपचाप देखता था। आपको लग रहा होगा कि मिटा दिया जितना सीखा था वो, और मिट गया जी, कौन सा उपाय बता रहे हैं आप, ऐसा अपने को नहीं करना भैया, नहीं तो हाथ से और चला गया वो लड़का, और चला गया, लग रहा होगा ऐसा बात करते करते। लेकिन देखियो तो, वो बहुत मुश्किल में तो आया था, और अब उसका जीवन बहुत आसान हो गया और शांत हो गया, भूल गया कि वापिस भी लौटना है। बहुत मजे में था, सुबह से शाम होती थी, रात गिर जाती थी, गायें जैसे बैठ जाती थी, वो भी उनके बीच बैठ जाता था, प्रकृति के बीच था और प्रकृति के निकट था, उसको अपनी प्रकृति मालूम पड़ गई थी, उसको अपना स्वभाव मालूम पड़ गया था, वो दुनिया के बोझ से बिल्कुल मुक्त हो गया था। और एक दिन ऐसा हुआ, उस कहानी में तो ऐसे ही लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि गायों ने आकर के कहा कि हम 1000 हो गए हैं, तुम्हें वापस नहीं लौटना, वो तो भूल ही गया था। देखो तो मजा, गायें आकर के कह रही हैं कि हम 1000 हो गए हैं, तुम्हें वापस नहीं लौटना। उसने कहा चलो लौटते हैं, इसमें क्या है, अब तो लौटना संभव ही नहीं है, जहां पहुंच गए हैं वहां से अब लौटना संभव नहीं है, और अगर इस शरीर से लौटना है तो लौट जाते हैं। और 1000 गायें और सदाशिव लौट रहा है आश्रम की तरफ, उसे सब याद आ रहा है, गुरु याद आ रहे हैं, उसे पिता याद आ रहा है, पर इसमें तो 12 वर्ष और लग गए थे, गुरु और पिता दोनों मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, बहुत बूढ़े हो गए होंगे, अब मैं उनसे मिलूंगा और उन्हें बताऊंगा कि जो पाने योग्य था मैंने पा लिया, जो जानने योग्य था मैंने जान लिया, अब कुछ जानना शेष नहीं, अब कुछ पाना शेष नहीं, जो अभी तक जाना था अब अच्छा नहीं लगता, जो अभी तक पाया था वो अच्छा नहीं लगता, अब तो मैंने जो पाया है वही अच्छा लगता, अब तो मैंने जो जाना है वही अच्छा लगता है। और लौट करके आया तो पूरे आश्रम में हल्ला हो गया कि सदाशिव लौटता है, 1000 गायों के साथ लौट रहा है सदाशिव। गुरुजी भी एक बार, जो कभी अपने शिष्य के आने पर नहीं उठे, गुरुजी भी उठ करके आश्रम के बाहर आए कि देखें सदाशिव लौट आया सचमुच। और देखा तो सारे शिष्य कह रहे थे कि वो देखो 1000 गायें, और वो देखो उसके आगे आगे उसके बीच में सदाशिव। गुरुजी ने बहुत गौर से देखा, सब शिष्यों से कहा कि कहां है, वहां तो कहीं नहीं दिखता। उन्होंने कहा देखो गुरुजी 1000 गायें और सदाशिव। बोले नहीं, मुझे तो सिर्फ 1001 गायें दिखाई पड़ती हैं, 1001 गायें दिखाई पड़ती हैं, 1000 गायें और सदाशिव नहीं, अब तो मुझे 1001 गायें दिखाई पड़ती, आने दो आश्रम में आने दो। और जैसे ही आया गुरु के पैर छुए, जो कि पहले कहता था कि आपने मेरे साथ धोखा किया, अब कहता है कि आपने मेरे साथ उपकार किया। गुरु कहता है कि इससे पहले कि तुम आश्रम में रुको, अपने पिता को धन्यवाद दे के आओ, क्योंकि पिता ने ही तो तुम्हें कहा था, इसलिए तो तुम यहां आए थे, जाओ मिलकर के आओ, शायद वे इंतजार कर रहे होंगे। और सचमुच पिता की आखिरी सांसें इस बात का इंतजार कर रही थीं। वो सच्चा पिता था कि बेटा उस सब को जान ले जो उसके जीवन में जानने योग्य है। और जैसे ही लौटा और पिता को जैसे ही उस सदाशिव ने देखा, और सदाशिव झुक गया पिता के चरणों में, पिता एक बार उस समय रोया था जब सदाशिव ने आंख उठा के नहीं देखा था, और आज पिता दूसरी बार रोया जब सदाशिव उसके चरणों में गिर गया, उसे गले लगाया कि सदाशिव अब मैं ठीक ठीक मर सकूंगा, तुम्हें जो कुछ पाना था वो तुमने पा लिया, तुम्हें जो जानना था वो जान लिया, तुमने अपने को जान लिया, अपने भीतर की भावनाओं को, अपने भीतर की संवेदनशीलता को जान लिया, बस इतना ही जानना और इतना ही पाना पर्याप्त था। उधर बुद्धि की आंख खुल गई थी, वो संसार से विमुख हो गए थे। एक वो जीवन की घटना थी भावनाओं की, एक ये जीवन की घटना है कि अगर हम सीखें, अगर हम कुछ भी पाएं तो देख लें कि कहीं और कुछ पाना शेष तो नहीं रह गया, क्या हमने वो सब पा लिया जिसके पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता, क्या हमने उसे जान लिया जिसके जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता। हम सब इसी कोशिश में अपने जीवन को, शेष जीवन को बिताएं कि जो वाकई जानने लायक है, जो वाकई पाने लायक है उसको हम पाएं। आज मेरे साथ इसी भावना से नमोकार करिए कि हम सब का जीवन पवित्र हो, हम सब के जीवन पवित्र भावनाएं आए, हम इतने संवेदनशील हों कि जहां जहां भी सांस धड़कती है उस सांस की आवाज हम सुन सकें, कोई भी सांस हमारे द्वारा नष्ट ना हो। जैसे हमारी सांस है ऐसे यहां जीने वाले हर व्यक्ति की सांस है, उस सांस को धक्का ना पहुंचे। अगर ऐसी भावनाएं हमारे भीतर प्रकट हो जाएं, तो इससे बड़ा और कोई पाना जीवन में अनिवार्य नहीं है। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार।
नमो अरिहंताय।
नमो सिद्धार्थम्। ओम नमो आयरियाडम्। ओम नमो अध्यायाडम्। नमो लोये सौसाहूणम्। जटायरिमंगलम् अरिहंतामंगलम् सिद्धामंगलम् साहूमंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तायरि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धालोगुत्तमा साहूलोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तायरि शरणं पवज्ञामि अरिहंते शरणं पवज्ञामि सिद्धे शरणं पवज्ञामि साहू शरणं पवज्ञामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्ञामि शरणं पवज्ञामि। वल्ली आचार्य गुरुर विद्यासागर मुनि महाराज।